آئیے آیت کے ساتھ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسلونک عن الاحلا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. کون سوال کرتے تھے؟ لکھیے صحابہ کرام. کا سے مراد ادھر صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام نے پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-11 سوال کیے, اور وہ ساری آیات یسلونک سے شروع ہوتی ہیں. ایک آدھی آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں ہے, جو کہ یسلونک سے شروع ہوتی ہے. ہمارے لیے اس میں ایک چھوٹی سی بات غور کی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت ان کے پاس ہوتے تھے, آپ کے ساتھ رہتے تھے, آپ کے معاملات تھے, لیکن صحابہ کا مزاج صرف سوال پوچھنے والا نہیں تھا. آج ہمارا مزاج کیا؟ جہاں کوئی بندہ دکھ جائے دین والا, اس کے نام کے ساتھ لفظ دین ہو, ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم اس سے کچھ علم لے لیں, ہم اس سے کچھ تقویٰ لے لیں, ہم اس سے کچھ اخلاق سیکھ لیں, ہم اس سے کوئی تربیت پا لیں. ہم سب سے جھٹ سے وہ ایک سوال پوچھنا تھا. یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ آج امت مسلمہ کا مزاج سوالوں والا ہے. اگر صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہوتے تو قرآن پاک میں یسلونک سے شروع ہونے والی آیتوں کی تعداد ان گنت ہوتی. 10-11 آیتیں, ایک پوری بک ہے اس پہ, یسلونک سے ہی شروع ہوتی ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام آیتیں جمع کی ہیں کہ جو کہ سوال سے شروع ہوتی ہیں. سوال پوچھنا چاہیے, لیکن پہلے علم حاصل کر کے پھر سوال پوچھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے, اور بہت سارے سوالات کا جواب آگے آ ہی رہا ہوتا ہے. خیر, سوال کیا تھا لوگوں کا؟ انل اہلتی, نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. سوال کیا تھا؟ کہ یہ چاند کبھی گھٹتا ہے, کبھی چاند بڑھتا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے؟ آج میں اور آپ تو وہی کی روشنی میں کائنات کو دیکھ ہی رہے ہیں نا. ہمیں سب چیزوں کی حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ دکھتی جا رہی ہے, لیکن صحابہ کرام ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جن کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی تو اسلام کی روشنی میں اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زندگی ہماری اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے پہلے تھی. ہم اسلام پہ نہیں تھے, یا اسلام پہ ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اسلام نہیں تھا, تو ہم چیزوں پہ غور نہیں کرتے تھے. لیکن کیا اب آپ کو اپنے اندر یہ چیز محسوس ہو رہی ہے, غور و فکر کی عادت, تدبر؟ تو پھر دل چاہنے لگتا ہے کہ جلدی سے ابھی ہمیں اس کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں مل جائے. یہی چیز لوگوں کو مائل کرتی ہے سوال کرنے میں. کوئی بری بات نہیں ہوتی سوال کرنا, لیکن جب نیا نیا دین زندگی میں آتا ہے تو بہت سارے سوال ابھرتے ہیں ذہنوں میں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ چاند کبھی چھوٹا سا ہے, کبھی بڑا سا, کبھی گول ہو جاتا ہے, پھر چھوٹا ہو جاتا ہے, دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ چاند کیا ہے. آج کے دور میں لوگ ہوتے ہیں کسی سائنٹسٹ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں, کسی مشین کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, لیکن صحابہ کے پاس ساری معلومات, جن کا دنیا کے معاملات سے تعلق تھا یا آخرت کے تعلق تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو آج ہمیں بھی اس میں ایک چھوٹی سی بات اپنے عمل کی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ علم کی حرص ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ دین کا علم جس کو آپ آخرت کے لیے کہتے ہیں, بلکہ دنیاوی علم کی بات ہے. اصل میں تو صحابہ کا یہ سوال سائنس سے متعلق ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چاند کیسا ہے, اور یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں جو غور و فکر کرتا ہے. سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں, اور اس سے پیچھے آپ نے آیت 20 کی پہلی آیت ان فی خلق السماوات و اختلاف اللیل و النہار میں دیکھا کہ عقل مند لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں یہ کیسے. اور صحابہ کرام ایسے ہی تھے, وہ بالکل لکیر کے فقیر نہیں تھے. سوال پوچھنے کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود سوچا بھی کرتے تھے. اور دیکھا جائے تو اندھیری رات میں ایک چمکتا ہوا چاند, کبھی اتنا, کبھی اتنا, اتنا, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم تو شروع سے چکے دیکھتے آئے, اور چندہ مامو دور کے, اور ہمیشہ چاند کو مامو ہی کہتے ہیں, کبھی چندہ چاچو کوئی نہیں کہتا. ہاں, سب اچھے رشتے نے نیالی رشتے, اور برے رشتے دے دیال کے رشتے. ہاں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ آخر چاند کیا ہے. اتنا بڑا آبجیکٹیو ہے جو ادھر بدلتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو بات تو حیرت کرتے. صحابہ کا سوال اصل میں یہ تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اتنے بڑے چاند کو اتنے مختلف کٹس کے ساتھ دکھاتی ہے. کبھی آپ نے کوئی ترشا ہوا ہیرا دیکھا ہو نا, اس کی بھی اتنی شیپس نہیں بن سکتی جو چاند کی 28 دنوں میں بن جاتی ہے. तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि कौन है ये जो चांदों के साथ मामला करता है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, कुल, ए नबी आप इनको कह दीजिए, हिया, ये हिया से यहाँ क्या मुराद है, चांद, क्योंकि अरबी में हिल्ला का लफ्ज़ देखिए ता की वजह से मुअन्नस है, तो हु होता तो मुजक्कर था, हिया है तो मुअन्नस है, फीमेल है फेमिनिन, क्यों, क्योंकि अल्लाह हिल्ला का लफ्ज़ मुअन्नस है। समझ आए तो समझे, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। का हिया मवाकीतुलिन्नास, ये लोगों को वक्त बताने का पैमाना है, चांद के जरिए से लोगों को वक्त पता चलते हैं, और साथ ही साथ वल हज्जी, हज के औकात मुकरर करने का भी ये जरिया है। कैसे, आप देखिए अल्लाह सुबहाना ताला ने आसमान पर एक कैलेंडर लटकाया हुआ है, ये चांद क्या है, कैलेंडर है, हिलाल को देखे तो पता चल जाता है कि आज चांद की पहली तारीख हो गई, कुछ दिन के बाद जब बिल्कुल आधा कटा हुआ देखे तो पता चल जाता है कि एक हफ्ता गुजर गया, फिर कुछ दिन के बाद जब उस आधे हिस्से को बिल्कुल फिर इस तरह से पूरे के पूरे स्फीयर में देखें जिसको फुल मून कहते हैं तो पता चल जाता है कि 2 हफ्ते हो गए, फिर कुछ दिन के बाद आप उस पूरे चांद को फिर कटते कटते एक हिस्से से आधा कटा हुआ देखते हैं तो आप कहते हैं कि 3 वीक हो गए, और जब पूरे का पूरा चांद कट के बिल्कुल बोले कल अर्जुन अल कदीम सूरत यासीन में आता है, खजूर की पतली सी शाख होता है, तो इंसान समझ जाता है कि ये 1 महीना हो गया। आज हमारे हाथों में घड़ियां, हमारे सेलफोन्स में घड़ियां, हमारी दीवारों पे घड़ियां, हर जगह घड़ियां हैं। ये दुनिया तो उन लोगों की भी है जिनके पास आज भी कोई दुनियावी तरक्की नहीं है, और उस दौर में जहां वक्त देखने का कोई आला ही नहीं था। आज भी जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, सूरज के साए से वक्त बता देते हैं कि इस वक्त ये वक्त होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि एक यूनिवर्सल कैलेंडर लगा हुआ है इस दुनिया में कि ये घटते बढ़ते लोगों को वक्त बता रहा है, और ख़ास तौर पे वक्त मालूम करने में जो अहम बात थी वो हज की थी। यहाँ आप ज़रा पिछली आयतों के साथ रब नोट कीजिएगा, पीछे रोजे की बात हुई ना, सौम, अब हज की बात हो गई, और साथ ही आज ही के सबक में हज के साथ किताल की बात आ रही है। बाहर लग रहा है बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो समझिए इन आयतों को वहाँ जहाँ पे ये नाजिल हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके हैं, मदीना में आने के बाद वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, मदीना में पढ़ेंगे, रोज़ों का महीना आएगा रोज़े भी रख सकते हैं, ज़कात देनी पड़ेगी देगी, लेकिन हज के लिए उनको मक्का मुकरमा जाना पड़ता, और उस वक्त मक्का मुकरमा मुशरिकीन के कब्जे में था, बात वाज़ेह, मुसलमानों को इजाज़त ही नहीं थी उधर जाने की, हालांकि घर उनका था। अब जब उधर हज के लिए जाना है या मुसलमानों को मक्का में जाना है तो उसके लिए किताल की ज़रूरत पेश आनी थी, इसलिए यहाँ आप देखेंगे किताल की बात आएगी, और किताल के लिए सब्र की बहुत ज़रूरत है, इसलिए पहले रोज़े की बात कर दी कि अपने घोड़ों को रोज़े रखाने की बजाय खुद रखो, सब्र पैदा होगा, फिर अगर मौका बने तो मुशरिकीन से लड़ना पड़े तो किताल करो, और उस किताल के नतीजे में खाना काबा को आज़ाद करवाओ और उसका हज करो। अब आपका माइंड तो इतनी तेज़ अभी नहीं चलेगा मुझे यकीन है, लेकिन अगर सीरा आप लोगों ने पढ़ी है तो आप सबको ये बात एक झट से पता चल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लम की 23 साल, 23 ईयर्स नबवी जिंदगी, टोटल 63 ईयर्स की नहीं बात करें, पूरी नबवी जिंदगी में आपने सिर्फ एक हज किया, ये बात तो बहुत दफा सुनी है ना, आज उसकी वजह मालूम कर लें। मक्का में थे 13 साल, उस वक्त हज का हुक्म की कोई सेंस ही नहीं बनती थी, सारा तो बुतों से भरा हुआ था, 360 बुत थे वहां। दूसरी बात है कि अभी मुसलमान इतने ज्यादा तकलीफ में थे, करें क्या। तीसरी बात आपको पता चलेगी इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयतों में आप पढ़ेंगे और सूरत तौबा में कि मुशरिकीन ने मक्का भी हज करते थे, लेकिन उन्होंने हज की शक्ल क्या बना दी थी, बस आज के दौर का कोई मेला ठेला, जाते खाते पीते स्टॉल लगाते चीज़ें बेचते अपने बाप दादा के किस्से कहानियाँ नात गोई शेर मुकाबले करते कराते, ना बीच में अल्लाह था ना अल्लाह की मोहब्बत थी, बिल्कुल उनके यहाँ हज एक तिजारती मेला बन चुका था, मनी मैटर था। अब जब इस तरह की जगह पे जहाँ लोग पहले ही रूह के बगैर नेकियां कर रहे हो, स्पिरिटलेस डीड्स, तो मुसलमान जाके हज कर लेते तो वो सरत नहीं आना था, इसलिए पूरे 13 साल में कोई हज नहीं हुआ। मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी दौर में मेराज का वाक्या पेश आया, वहां नमाज फर्ज हुई, अब नमाजें पढ़ो इस तरह। बाकी तो पढ़ते ही थे पहले, लेकिन असल जो आज की फॉर्म है, मदीना में आए, अभी आपने पीछे पढ़ा, 2 हिजरी में रोजे फर्ज हो गए। हज कब पहला किया? 8 हिजरी में, मक्का फतह होने के बाद सन 9 हिजरी में पहला हज हुआ। बात वाज़ेह? कितने साल हुए? 13 और 9, आप लगा ली 21 साल आ चुके हैं इस्लाम को दुनिया में आए हुए। फिर अल्लाह के नबी एक ही हज करते हैं, और उस हज के एक ही साल 9 गुजरा तो 10 के बाद आपकी डेथ हो गई। हज्जतुल विदा के कुछ महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। सन 9 हिजरी में मुसलमानों ने अपने तरीके से हज किया था, अल्लाह के नबी ने 10 हिजरी में किया था, और उसके 3-4 महीने के बाद आपकी, बल्कि रबी अव्वल लगा ले जिलहज के बाद, तो 2-2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। तो ये वो हालात थे जहाँ ये आयतें नाजिल हो रही थी। अरबों में हज के नाते से बहुत सारी बिदात थी। अब अगली आयत में उसका जिक्र है कि करते हज थे अपने जोम में, वो हज के लिए निकलते थे, लेकिन हज के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा बाप दादा के नाम पर तब्दीलियां कर ली थी कि क्या करते थे, पहले समझ लें तो फिर आयत के अंदर भी आ जाएगा कि जब हज के लिए निकलते, अब आप इमेजिनेशन में लाएं, हमारे यहाँ भी जब लोग हज के लिए निकलते हैं, लोग स्पेशल मिलने जाते हैं, फूल डालो, पत्तियां डालो, बादाम दो, इनको तोहफे दो ताकि ये भी कुछ लेके आए, हर चक्कर में इनको याद ही आता रहे किसने क्या दिया था, उसको क्या देना, उनको अल्लाह से ज्यादा हम याद आते रहे, चलो तोहफा दे दो ताकि इसी बहाने वो हमें याद करें। हज कोई करके आता है, कितने तपाक से लोग उसको मिलने जाते हैं, कभी सोचा आपने? फूलों की पत्तियां जितनी उन दिनों में हमारे मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे गिरी होती हैं, आपने कभी अंदाजा किया है कि और उसकी जगह कितने हादसे हो सकते हैं? हाजी को लोग जाते हैं लेने बड़े शौक से, किसी काम की चीज पे नहीं लाते। आप सोचिए कि हज के लिए जो आया है, बहुत अच्छी बात है हज किया, आप सिला रहमी के लिए जाएं, रिश्तेदारी के लिए जाएं, कोई गुनाह नहीं ना फतवा है, लेकिन सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज की बात करती हूँ कि बाज दफा शैतान हमसे वो नेकियां करवा देता है कि जिन नेकियों के अंदर हमारा कोई सदका जारिया नहीं बन रहा होता, बस ठीक है कर रहे हैं, या वो मुआशरत के नाम पे होती है, या खानदान के नाम पे, या रस्म के नाम पे होती है, लेकिन जिस नेकी में एक हकीकी तौर पे हमारा फायदा होना होता है, शैतान कभी उसकी तरफ ख्याल ही नहीं डालता, कहते नहीं ये काम नहीं हम कर सकते, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो पंप एंड श्योर ग्लैमर नहीं होता। मिसाल है कि हज करने वालों को कोई ले जाएगा, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है उसको कोई नहीं लेने जाता, सोचने की बात है ना, कोई रोजा रखता है तो उसको नहीं कोई कहता चलो इसने रोजा रखा हुआ है ये बेचारा किधर जा रहा है उसको ले जाओ। तो ये वो कैफियत होती है जो उम्मत के अंदर, इल्म के लिए कोई जाता है, हो सकता है कि हमारे सामने से पैदल गुजर के आ रहा हो, हम नहीं उसको लेने जाएंगे बिठाएंगे कि चलो भाई आओ बैठो, तुम जो आज सीखोगे हमें ही फायदा होगा ना। तो जब कौमों का मिजाज ये बन जाता है कि पंप एंड शो और रस्म वाली नेकियां बहुत आम होने लगें, तो दीन की रूह चली जाती है। इसके बरक्स एक बंदा मोमिन बहुत बड़ा ताजिर होता है, इंतहा से ज्यादा बारीक उसकी नजर होती है, वो अपनी नेकियों के मौके ढूंढता है, क्या ऐसी नेकी करूं जिस नेकी के बाद मेरा अजर बढ़ जाए, फिर उस नेकी के अंदर वो इतना हिस्सा डालता है कि उसका दिल चाहता है कि मैं करूं ना करूं लेकिन मेरा नामे अमाल जो है इस नेकी के साथ भरा हो। अरबों में हज होता था, हजरत इब्राहिम और इस्माइली ने तो ये घर बनाया था, ये कैसे हो सकता है कि अरब कल्चर में हज ना हो, लिहाजा हज करते थे, लेकिन उसके अंदर मन माने तरीकों की बिदात शामिल की थी। उसमें एक बिदत क्या थी जिसका एक असर आज भी आपको दिखेगा, और वो क्या थी, कहते थे कि जब कोई हज की नीयत से निकला, आप इमेजिन करें ये हमारा घर है, हमने हज की नीयत की, हम निकले, नीचे गए सीढ़ियों में से, बस गए बाहर मेन डोर तक गए, एकदम याद आ गया ओह वो जैकेट तो ऊपर भूल गए, मिसाल है ना। और आपने देखा अक्सर हम कहीं भी जाएं तो चीजें तो भूलते हैं, एक दफा जा रहे हैं फिर ओह ये भी भूल गया, वो फोन भूल गया, ये वो भूल गए। अब जूं ही घर की चौखट से निकल चुके थे ना बाहर गए, तो याद आता कि कोई चीज लानी है तो वापिस आके ले लो, कहते ना 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 हज की नीयत से गए थे तो अब ये बगैर हज किए वापस आ रहेंगे तो बुरा शगुन है, नंबर एक वजह। दूसरी क्या कहते थे कि हज के मौके पे सर पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, किसी चीज के साये से नहीं गुजरना, तो जब घर की चौखट के साये से गुजरेंगे तो गोया के ये तो हमने अपने सर को ढांक लिया। शिद्दत इंतहा पसंदी, पूरे सबक से आज आपको यही मिलेगा कि जब मुसलमान अमली तौर पे डाउनफॉल का शिकार होते हैं तो वो कहते हैं ना कि यानी मच्छरों को वो पकड़ लेते हैं और बड़े बड़े ऊँट निकल जाते हैं, कि जाहिरदारी पे इतनी तवज्जो होती थी उनकी कि वो इस तरह के काम करते, फिर करते क्या, आना तो था जैकेट के बगैर, मिसाल है, जाना नहीं, फिर क्या करते, इधर से नहीं आते, पीछे से आते, यहाँ से। अब आप इस घर को सोचें ना, इस होटल को सोचें, इस दीवार से सीधा सामने से कोई आ सकता है ना, नहीं इधर से नहीं, फिर इधर से, फिर पीछे से, ये जो सीढ़ी है ना वर्कर्स के आने की, उधर से जाके ऊपर से छत के रास्ते कूदते थे। इसका अल्लाह ने जिक्र कर दिया, वलई सल बिर्रु बियंता तुल बुयूत बुयूत अमिन जुहूरिहा। ये तो कोई नेकी की बात नहीं कि तुम घरों में उनकी पुश्त से जाओ। और इसको बड़ा फख्र समझते थे कि देखो हम कितने ज्यादा तकवा का ख्याल रखते हैं, हम कितने मोहतात लोग हैं आज की जुबान में, कि वी आर सो मच केयरफुल, कि हम अब इधर से नहीं जाते, उधर से जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं ये तो कोई नेकी की बात ही नहीं है, ये तो बिगड़ी हुई बात है। इसी तरह एक और बिदअत क्या थी, कि जब कभी घर से निकलते, दरवाजों से गुजरने की जरूरत पड़ती, ना निकलते बल्कि पीछे से आते, यानी बिल्कुल आप कह लीजिए कि अपनी मर्जी के तौर तरीके उन्होंने हज के अंदर डाल दिए थे। जैसे आज हमारे यहाँ भी तो हज के साथ बहुत सारी बिदअत आ चुकी है ना, यकीन करें, अभी तो हम बड़े होके समझ आ गई, अल्लाह ने कुरान भी पढ़ा दिया। मेरे ये ख्याल में था कि जो बंदा हज के लिए जाता है उसको बादाम जरूर साथ लेके जाने चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन से देखा है कि जब लोग हज के लिए जाते थे पहले दौर में, तो रिश्तेदार मिलने आते थे ना, तो किलो दो दो किलो बादाम छीले हुए देते थे। आपको किसी को याद है ये बात, क्यों करते थे? अब मुझे समझ आती है, उस वक्त कहते होंगे इसका दिमाग तेज हो, ये खाए, इसने बड़ी मेहनत करनी है, रियली, लेकिन एक रिचुअल बंधी हुई है। और ये भी मुझे पता है कि बचपन से जहन में है कि जब कोई हज पे जाए तो उसको जोड़ा जरूर देना होता है, ये तो आपको भी पता है माशाल्लाह। ये कुछ इस किस्म की चीजें। फिर ये भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ये भी एक है कि जब हज पे जाए तो फिर वापसी पे ससुराल और नंद और सास के लिए कोई ना कोई सोने की चीज भी जरूरी लानी चाहिए। और एक ये भी बहुत अच्छी रस्म और बिदत है लोगों में कि जब हज पे जाएंगे ना तो चूड़ियां जरूर बदलवा के नहीं लेनी होती हैं। ये इस किस्म की चीजें कि जिसमें दीन की असर रूह खत्म हो जाए, अल्लाह ताला कहता है छोड़ो, ये कोई दीन है तुम्हारा, ये तो जाहिरदारी है। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, बल्कि नेकी तो उसकी है जो कोई तकवा इख्तियार करे। यहाँ अब आप देखिए एकदम लफ्ज वलाकिन्नल बिर्र आ गया, तो आपको कौन सी आयत याद आई, लैसल बिर्र, वहां आयते बिर थी। उसके आखिर में आप देखिए क्या लफ्ज था, वउलाइका हुमुल मुत्तकून, वही लोग हैं जो वो सारे काम कर लेंगे, मना वना बिल्ला से लेके आखिर तक, वही तकवा वाले हैं। यहाँ उसी को अल्लाह ताला ने दूसरे रंग में कह दिया, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी तो उसकी है जो तकवा लेकर आए। क्या पता चला कि असल तोहफा अगर हज से लेके आते हो ना तो तकवा का लाओ, जिस दिल से जाओ उससे वापस ना आओ। मैं शायद पे आती हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छी अम्मा, मतलब बहुत मोहब्बत करती थी, तो कहती थी मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो अपने बेटे की कहानी सुनाती होती थी, शहर में मशहूर था कि उनके बेटे हज के ग्रुप लेके जाते हैं, और कहती थी कि मेरा बेटा फकीर बन जाता है उस घर में जाके, इतनी खिदमत करता है अपने ग्रुप वालों की कि यहाँ रहते हुए कोई बंदा किसी दूसरे के ग्रुप में जाना ही नहीं पसंद करता। लेकिन कहती हैं कि पता है तुम्हें ये तब्दीली आई कैसे उसमें, कहती जैसे जवान लड़के होते हैं ना ये ऐसा ही था, यानी कोई शरिया ऐप नहीं थे, लेकिन पान चा लिया, रात को दोस्तों में बैठना करना कराना, बिल्कुल खलंडरा सा ये लड़का था, शादी भी हो गई थी तो बस जिम्मेदारियां नहीं लेता था, लेकिन एक हज किया। कहती वो हज क्या इसने किया कि इसका दिल ही अल्लाह के साथ जुड़ गया, तो उसने नहीं कि क्या मैं हर साल लोगों को लेके आऊंगा, बिल्कुल पर्सनैलिटी बदल गई। हकीकत है अगर आपको अल्लाह हज नसीब करे, और अल्लाह करे उम्रा हज अगर नहीं किया हुआ, आप जब उसकी लज्जत पाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है मेरे दिल में, कि वैसे तो हमारा ख्याल किसी की तरफ इतना नहीं जाता, लेकिन जब हम किसी के घर गए हो तो हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं ना। आप यहाँ बैठे हैं, आपको बहन भाई याद आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन आप पाकिस्तान चली जाए, बैठी भाई के घर में हो, बैठी हो, तो हर वक्त उनके ख्याल है ना, इनके बच्चे के, यकीन करें पास ना रहे तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, फिक्र भी खत्म हो जाता है, उनके लिए दुआएं नहीं निकलती। जब आप उनके घर जाते हैं, उनके कोई मसले सुनते हैं, कोई उनके बच्चों को देखते हैं, तो फिर दिल से दुआएं भी निकलती हैं। तो जिस तरह हम किसी के घर जाते हैं तो उससे मोहब्बत होती है, उसका ख्याल है, इस तरह खाना काबा में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। और हज क्या है ये तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे, आगे जो मौजू चलता रहेगा, इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लफ्ज़ तकवा पे बात करें, कि तकवा है वो चीज़ जो इंसान को नेकियां करने की तौफीक भी देती है, और तकवा ही वो चीज़ है कि जो मतलूब है। आप देखिए कि दिल किसी को नियम दिखा सकते हैं, हमारा दिल कैसा है, لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی نگاہوں میں. اسی لیے کہا وات البیوت من ابوابہا, دروازوں سے آیا کرو گھر میں. اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ ڈھنگ سے کام کرو, سیدھے طریقے سے کام کرو, سوال کا جواب دیتے ہوئے, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. بالکل ایک غلطی کی اصلاح کر دی کہ یہ جو دین کے نام پہ تم الٹے سیدھے کام کرتے ہو وہ نہ کرو. ایک کلپ دکھایا گیا تھا اور میں نے خود بھی دیکھا, کوئی قبر ہے کسی بابا جی کی اور لوگ باہر سے جب آتے ہیں تو سیدھے ہوتے ہیں, جو ہی اس قبر کی حدود یعنی چار دیواری کے اندر یعنی جہاں سے قبر نظر آنی شروع ہوتی ہے تو وہ جانوروں کی طرح, جیسے گھوڑے نہیں ہوتے دونوں پاؤں اور ہاتھ بھی لگا دیں تو اس طرح رینگتے ہوئے بابا جی کی قبر پہ آتے ہیں. خیال کیا ہے کہ کھڑے رہیں گے تو گویا کہ ہم اونچے ہو گئے تو قبر نیچی ہے تو یہ بے ادبی ہے. اس قسم کی باتیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے حرم میں دیکھا کہ جب ہم صحیح کر رہے تھے صفا اور مروہ کی تو وہاں کیا دیکھا, ایک دم جیسے بالکل تڑفراہٹ سی مچ گئی, گھبراہٹ. کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے لوگوں کا حرم سے واپس آ رہا ہے. اب آپ میری بات کو اگر امیجینیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے کہ حرم سے جب آپ چکر لگا کے باب صفا سے بھی آتے ہیں تو بس آپ ادھر آئیں گے نا, تو وہ کس طرح آ رہے تھے, منہ حرم کی طرف ہے, پیچھا نہیں اس کو کرنا, اور یوں آ رہے تھے اور جو لوگ صفا اور مروہ میں صحیح کر رہے تھے ظاہر ان سے ٹکرا بھی رہے تھے, پیچھے ان کو چل پیچھے رہے ہیں لیکن دیکھا کے رہے. کیا ہے جی کہ ہم نے حرم کو پیچھا نہیں دکھانا. یہ نیکیاں کون لوگ کرتے ہیں آج ہمارے ہاں نہیں, قرآن کو پیچھا نہ دکھاؤ. یہ بات تو آپ سب نے بڑوں میں دیکھی ہے نا کہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو بیک نہ ہو, قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو, سنی ہوئی ہے نا باتیں. گھر میں ایک الماری ہے اس میں اگر اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس الماری میں سب سے ایون نیچے خانے میں بھی جوتے رکھے ہیں تو نہ رکھو, جوتے پہن کے قرآن نہ پڑھو. یہ سب ظاہرداری ہے. اور میں نے فیل کیا جتنا جس کے اندر دین کی روح نہیں ہوتی نا اتنا وہ ان چیزوں میں زیادہ الجھتا ہے. جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا وہ قرآن کو ایک اپنی ہینڈ بک کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور جنہوں نے پکڑنی ہے ایسے بڑے پروٹوکول سے پہلے وضو بھی کریں گے, عطر بھی لگائیں گے, پرفیوم بھی لگائیں گے, اس کو باہر سل کے کور میں بھی ڈالیں گے, اس پہ گوٹی بھی لگا لیں گے, پھر بڑے پیار سے کھولیں گے, تھوڑی دیر پڑا پھر بند کر کے رکھ دیا. یہی فرق ہے ایک تبرک اور ایک مینول میں. اس ویکینڈ پہ الحمدللہ جو کورس شروع ہوا برلن میں, اگر آپ میں سنا تو سیٹرڈے کا جو درس تھا یہی ٹاپک تھا کہ اگر میں قرآن نہیں سمجھوں گی تو میں کیا لوز کروں گی. 10 پوائنٹ دیے, اس میں ایک یہی تھا کہ قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ غور و فکر ہے, تدبر ہے. اور غور و فکر کس بات پہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے سمجھ آتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرینچ کا اخبار آپ کے سامنے رکھا ہے جو پڑھ نہیں پا رہے آپ سمجھ نہیں آ رہے اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں. تصویروں پہ تو غور کر لیں گے لفظوں پہ نہیں کرتے, تو اس قرآن پہ غور و فکر کیسے کریں گے جب یہ دماغ میں نہیں آتا. نتیجہ کیا کہ پھر کچھ ظاہری کام کر کر کے ہم اپنے آپ کو بہلا لیتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. تقویٰ مومن کا زادہ راہ ہے. آپ نے روزے کے مسائل میں دیکھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, سب آپ بولیں لعلکم تتقون. روزہ تقویٰ سکھاتا, نماز تقویٰ سکھاتی, حج بھی تقویٰ سکھاتا ہے. بن دیکھے رب کے لیے انسان اتنی مشقتیں سہے, اتنی گھر بار چھوڑ کے وہاں دو چار جوڑوں میں اتنے دن رہ جانا, کیا کیا ریچولز ہیں حج کے آگے جہاں بات آئے گی کرے گی. تو یہاں سے ہم سب کو اپنے تقویٰ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیسا ہے. اور یاد رکھیے کہ بعض لوگ ظاہری احکامات پہ اتنی بحثیں کرتے ہیں کہ اندر کی بات ختم ہی ہو چکی ہوتی ہے. نماز کے حال الیہ پہ اتنی بات کریں گے, اس کے ریچولز پہ اتنی بات کریں گے, لیکن روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بس ایک بات کر کے بات چھوڑ دی کہ الٹے سیدھے کام نہ کیا کرو. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی بات ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم درست طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا. نہیں, ہوش سے کام کیجئے, سمجھداری سے کام کیجئے. ہلفلاہٹ مچنا ترفلاہٹ ہے, ایک گر رہی ہے چیز, ایک پڑ رہی ہے, ایک اٹھا رہے ہیں, ایک رکھ رہے ہیں, ایک گر رہے ہیں, کیا ہر گھبراہٹ ہے. مومن کے اندر سکون ہوتا ہے, اطمینان, وہی کروں گی جو ہو سکتا ہے, اتنے کروں گی جتنا ہو سکتا ہے. کرنا ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کام کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی استعداد جو ہے وہ خود بہت بڑھا دے گا. پھر اس کے اندر ایک دو باتیں اور کر کے آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہاں نہ کی تو پھر آگے جا کے مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ لفظ اہلہ آیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی ایک دعا سکھائی ہے. آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے, वैसे आपको दुआओं के सेशन में अलग से भी हम सिखाएंगे, लेकिन दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह इस चांद को कर दे अमन वाला और अमान वाला, पीसफुल कर दे, यानी आज पहली का चांद निकला है ये पूरा महीना मेरा अमन और चैन वाला हो, फिर वसलामती वसलाम सलामती वाला हो, पीसफुल हो, सुकून वाला हो, फिर हम चांद को मुखातिब करके कहते हैं कि रब्बी व रब्बुकल्लाह, तेरा और मेरा रब अल्लाह। क्यों? कि कुछ लोग चांद को भी पूछते थे, तब से सलम ने फरमाया कि जो नया चांद देखकर ये दुआ मांग ले पूरा महीना अल्लाह की तरफ से अमन में होगा। आप सब मुझे बताइए कितने लोग हैं जो इस सुन्नत पे अमल करते हैं, हाथ खड़ा करें। नया चांद देखकर दुआ मांगना रहले 10% लोग भी नहीं है। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं हमारे घरों में झगड़े हैं, कितने फितने हैं ना आज, हादसात हैं दुनिया में कितने हैं, तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अल्लाह के नबी ने दी हैं। तो अब आज से अपने लिए अमल लिखें कि जब भी कोई नया चांद दिखे, कब नया चांद दिखना बाय द वे, तो पढ़ेंगे आज कौन सा, देखने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि पहले दिन का तो हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, हिलाल में पहले दूसरे तीसरे सब दिनों का आ जाता है, जब पहली दफ़ा आपकी नज़र पड़े देखें, और नहीं पड़े तो अपने बेटे को देख के पढ़ लें कि ये भी तो मेरा चांद ही है। कई लोग अपने बच्चों को ही चांद कहते रहते हैं। तो बहरहाल यह कि ये एक छोटी सी सुन्नत है, इस पर अमल करना चाहिए। और इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा जो इतने बड़े चांद को कवर करके बैठा हुआ, कितना बड़ा चांद अल्लाह से मिलता है, अल्लाह की बात मानता है। अगर आप देखें वेबसाइट पे जाके जहाँ प्रेजेंटेशंस का लिंक है, तो आप उसमें देखिएगा चांद की मुख्तलिफ शक्लें, पूरे वो मराहल हैं जो चांद के हैं, अकल दंग रह जाती है। इतना बड़ा चांद अगर अल्लाह के हुक्म को मानता है, तो फिर मैं इतनी छोटी हो के क्यों ना मानूं।
यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वलहज وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون